તારીખ 24/8/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 અને 207 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 691
ચંદ્ર વચન 208 ચાલતા હૈ આગે કહેતે હૈ ઋષભદેવ જીને 98 પુત્રો કો ત્વરા સે મોક્ષ હોને કા યહી ઉપદેશ કિયા થા ક્યો યે બાત લિખી કે એક કોડા કોડી સાગર કે પહેલે ભરત ક્ષેત્ર મેં જૈન ધર્મ કા પ્રારંભ હુઆ તબ યહાં સે હી ભગવાન ને યે બાત ચાલુ કિયા થા ये कोई बात नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो अनंत काल से वही बात है लेकिन अनंत काल का इतिहास नहीं मिलता। इतिहास मिलता है 24 तीर्थंकरों का, उसमें प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले चतुर्थारा के प्रारंभ में हुआ। चतुर्थारा एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। इसके पहले इस क्षेत्र में जैन धर्म नहीं था, युगलिया का क्षेत्र था, धर्म ही नहीं था, कर्मभूमि नहीं थी, धर्मभूमि भी नहीं थी, सिर्फ भोग भूमि थी। ये भरत क्षेत्र है वो भोग भूमि थी। तो जब धर्म शुरू हुआ इस 24 का, इसके पहले तो अनंत 24 हो गई है, उसमें ऋषभदेव भगवान ने भी यही बात कही थी कि अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो ज्ञानी से होगी और इसके लिए एक निष्ठा, तन मन धन की आसक्ति का त्याग और ज्ञानी के प्रति अत्यंत भक्ति हुए बिना किसी को ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं है और नहीं होती है, इसलिए भगवान ने भी यहाँ से ही बात कही थी। परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने यही उपदेश किया है। और ये जो सुखदेव जी का जमाना आया परीक्षित राजा का, वो अभी पीछे के काल की बात है, उसमें भी यही उपदेश चला है। उपदेश पद्धति में भी कोई फेरफार नहीं हुआ है, क्योंकि मार्ग में फेरफार होता नहीं, तीन काल में एक ही मार्ग होता है। अनंत काल तक समझ में नहीं आया। तन मन धन के आसक्ति का त्याग, मन में आसक्ति का, मन में इच्छाएं होती हैं, मन में इच्छाएं होती हैं वो आसक्ति के कारण से होती है, आसक्ति सुख बुद्धि के कारण से होती है और मन इच्छाएं करता रहता है। एक तो इसी को भी मन कहते हैं, दूसरा मन इसको कहते हैं जो ज्ञान का सूक्ष्म भाव है वो मन के साथ काम करता है। तो किसी की विचार शक्ति ज़्यादा होती है, कोई मन में ज़्यादा समझता है, कोई कम समझता है, तो उसका अहम भाव होता है कि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, उसको भी त्याग करना। आसक्ति माने खिंचाव, परिणाम का खिंचाव, तन की ओर, मन की ओर, धन की ओर जो भी रहता है वो आत्मा की ओर नहीं जाता। आत्मज्ञान जिसको करना है, ज्ञान प्राप्ति करने का प्रकरण चल रहा है, तो जिसको ज्ञान प्राप्ति करनी है उसको आत्मा, ज्ञान भंडार जो आत्मा है उसके ऊपर झुकना होगा। अगर इधर नहीं झुकता है तो उधर झुकता है, विपरीत, वहां तक काम होता नहीं ऐसा। अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्ति नहीं करता, परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी की आज्ञा का आराधक माने क्या, कि ज्ञानी जो रास्ते चले हैं वही रास्ता दिखाएगा, वही रास्ते चलने का है। ज्ञानी अंतर्मुख होते हैं, कैसे होते हैं अंतर्मुख होते हैं, कैसे अंतर्मुख हुआ जाए वो कोई कथन का विषय नहीं है, ये कोई वचन का विषय नहीं है। वचन का विषय की हद वहां पूरी होती है कि अंतर्मुख हो जाओ, लेकिन अंतर्मुख कैसे होना ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। और ये इस अध्यात्म के विषय की टॉप सीक्रेट है, एक बहुत रहस्यमय घटना है जो देखने से मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके वचन है ही नहीं। वचनातीत विषय है, मनातीत विषय है, और वो ज्ञानी के परिणमन में प्रत्यक्ष तौर से दिखने में आती है। किसको दिखने में आती है, कि जिसको इस प्रकार की तथारूप योग्यता होती है उसको दिखने में आती है, सबको नहीं दिखने में आती है। इसके लिए योग्यता भी चाहिए। हाँ, तथारूप योग्यता में तो 674 वाली बात तो अपने यहाँ बहुत चली है कि दृढ़ मुमुक्षुता होवे, मैंने जीवन में शीघ्र पूर्ण होने का, पूर्ण शुद्धि का ध्येय होवे, और प्राप्त उपदेश का अमलीकरण उसी वक्त, कब, सुनते ही चोट लगे और प्रयास चालू हो जाए, सोगानी जी के कथन अनुसार। ऐसे अवधारण करने का की योग्यता हुए, प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की योग्यता हुए, अंगीकार करने की योग्यता हुए, अमलीकरण करने की योग्यता हुए, और इसके पश्चात अंतरात्म वृत्ति जागृत हुए, तभी अंतर्मुख होने का विषय देखने में क्षमता की प्राप्ति होती है, योग्यता की प्राप्ति होती है। इसके पहले किसी को नहीं होती। इतनी योग्यता होने से वो ज्ञानी की अंतर्मुख परिणति को देखता है, तब उसको प्रथम संकेत होता है पहचान वाला। फिर स्वरूप की पहचान में अनुभवान से प्रतीति आती है तो दूसरा संकेत होता है, और फिर निर्विकल्प सम्यक दर्शन होते ही वास्तविक सम्यक दर्शन, परमार्थ सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, वो तीसरा संकेत है। तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति है, तभी आत्मा का साक्षात्कार है, तभी अंतर में रहा हुआ परमात्मा का साक्षात्कार है, वही भगवान का दर्शन है, बाकी कोई भगवान का दर्शन है ही नहीं। तो अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे, स्वच्छंद से मैंने अपनी मनमानी, अपनी इच्छा अनुसार, कल्पना से, विचार से, ग्रंथ पढ़ करके या प्रवचन सुन करके, अपनी कल्पना से अनंत काल तक परिश्रम करे ना, उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक जो होता है, सबसे पहले वो बात पर ज़्यादा वजन दिया है कि हमें एकांत आज्ञा में रहना है, दूसरी बात हमें नहीं चाहिए। हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ समझते नहीं, किस विषय में अंतर्मुख होने के विषय में। बाकी जो जानकारी है वो जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। तो अंतर्मुख होने को जाने नहीं, पर दूसरी दूसरी जानकारी का अहम करे कि मैं जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, बात ऐसी है ऐसी है, तो अनंत काल तक उसमें तो कोई पता लगने वाला है ही नहीं। जानकारी का हम वो बात करते थे शुरू शुरू में, कि जानकारी वाला क्या कहते हैं, हमको पता है ये बात, कहते तो उसका भी पता है ये बात, के इसका भी पता है और बहुत पता है, इसमें खुद ही लापता है। क्या है? खुद ही लापता है, पता है पता है, उसमें लापता है, ये बात हो जाती है। तो कहते हैं कि ज्ञानी की आज्ञा में रहने वाला अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन नहीं लिया। समवसरण में ऐसे जीव होते हैं, मुनि दीक्षा तो एडवांस में ले लिया हो, क्या मिथ्यात्वावस्था में द्रविलिंग हो जाए, प्योर द्रविलिंग हो, प्योर मैंने क्या कोई भूल नहीं हुए, समझ में और क्रिया में कोई भूल नहीं हुए, जिनोक्त व्यवहार, जिनोक्त व्यवहार का शुद्ध प्रतिपालन, कैसा शुद्ध प्रतिपालन हो गए, ऐसे तो एडवांस में हो गया हो लेकिन आज्ञा में नहीं आया हो, और आज्ञा में आते ही सम्यक दर्शन, मुनि दशा और केवल ज्ञान सब अंतर्मुहूर्त में, क्या सम्यक दर्शन, मुनि दशा और केवल ज्ञान, एक घंटे में सब कुछ कर सकता है। शास्त्र में कही हुई आज्ञाएं परोक्ष है, शास्त्र में बहुत उपदेश दिया है वो सब परोक्ष है, लिखने वाला प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए सभी आज्ञाएं परोक्ष है। और वे जीव को अधिकारी होने के लिए कही है, पात्रता लाने में वो काम में आती है, और पात्रता आने पर फिर अगर ज्ञानी मिलता है पात्र जीव को तो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। पात्रता बिना ज्ञानी मिलता है तो भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, और पात्रता होती और ज्ञानी नहीं मिलता है तो भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। तो शास्त्र में जो उपदेश दिया है वो अधिकारी होने के लिए कही है बात, उससे पात्रता आ सकती है, मोक्ष मार्ग नहीं आ सकता है, पात्रता अवश्य आ सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन करना चाहिए, उसमें तो प्रत्यक्ष ही चाहिए। इसका कारण क्या है कि कभी किसी को ज्ञानी की पहचान हुए बिना आत्मा की पहचान हुई नहीं, और कभी किसी को आत्मा की पहचान हुए बिना आत्मानुभूति हुई नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, ये इसका क्रम है। और ज्ञानी की पहचान प्रत्यक्ष ज्ञानी बिना होती नहीं, क्यों कि एक व्यक्तिगत पहचान है ये, वो व्यक्ति की अनुपस्थिति में कैसे हो सकती है, तो उसका तो परिचय करना पड़े। पहचान का तो एक ही प्रोसेस है कि परिचय हुए बिना किसी की पहचान होती नहीं, बिना परिचय किसी को किसी की पहचान हुई हो ऐसा बनता नहीं है। तो जो ज्ञानी महात्मा तीर्थंकर भूतकाल में हो गए उनका परिचय कैसे करोगे, वो तो संभवित ही नहीं। इसलिए भूतकाल में अनंत ज्ञानी अनंत तीर्थंकर हो गए हैं लेकिन किसी की पहचान हो सकती नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए भी ज्ञानी की आज्ञा का ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन करना चाहिए। दूसरी बात वो है कि जीव कदम कदम पे भूलता है और कदम कदम पे ठोकर खाता है। रास्ता ऐसा अनजाना है तो उसको बहुत जरूरत पड़ती है, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की आराधना बिना आराधक हुए बिना किसी को ज्ञान प्राप्ति हो सकती नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी कही, जिसको ज्ञान प्राप्ति कही है करनी है उनके लिए ये ज्ञान मार्ग की श्रेणी, श्रेणी मैंने वर्ग, पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, ये बात। इसे प्राप्त किए बिना दूसरे मार्ग से मोक्ष नहीं है। इसके सिवा कोई दूसरे मार्ग से परिभ्रमण मिटे, चार गति 84 लाख योनि का जन्म मरण मिटे, कोई दूसरा मार्ग कोई दूसरा उपाय इस विश्व में है नहीं, जगत में कहीं भी नहीं है। एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ। कृपालु देव तो कहते हैं कि दो जगत में दो जैन ही नहीं होते हैं, दो प्रकार के जैन होते हैं नहीं, एक ही प्रकार के होते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत से मत मतांतर हो गए और बहुत से संप्रदाय हो गए जैनों में भी, वो बात ठीक नहीं हुई है, वो बात उचित नहीं हुई। तीर्थंकर देव का तो एक ही मार्ग है और एक ही मार्ग पे सबको चलना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा, इसके सिवा किसी के मोक्ष होने का सवाल है ही नहीं। अब जो बात कही एक महत्वपूर्ण बात कही कि इस गुप्त तत्व का जो आराधन करता है वह प्रत्यक्ष अमृत को पाकर अभय हो जाता है। कौन सा गुप्त तत्व है? प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए और प्रत्यक्ष ज्ञानी के प्रति एक निष्ठा से, जो बात कही ना आगे 7वें नंबर में, एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके अत्यंत भक्ति से आज्ञा में अगर रहता है तो उसको प्रत्यक्ष अमृत की प्राप्ति होती है और वो निर्भय हो जाता है। ये ज्ञानी की उपस्थिति का ये जो विषय है ये हमेशा हमेशा जगत में गुप्त रहा। क्या रहा? गुप्त रहा। इसलिए गुप्त रहा है कि ग्रंथ तो बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी इस विषय में भूल कर लेते हैं और अनंत काल में यहाँ ही भूल हुई है कि प्रत्यक्ष का क्या फायदा है वो मालूम नहीं पड़ा। तो इस गुप्त तत्व का जो आराधन करते हैं यानी जिसको प्रत्यक्ष ज्ञानी की जरूरत महसूस हुई, परिचय किया और पहचान की, ये विषय हमेशा गुप्त रहा है कि ऐसी पहचान से स्वरूप की पहचान आ सकती है। सत्पुरुष के पहचान के वो ज्ञान की पर्याय है ना, पहचान वाली जो है वो ज्ञान की पर्याय है। उसके गर्भ में दूसरा समकित आ गया, जन्म बाद में होगा, पहले तो गर्भ में आता है फिर जन्म होता है ना मनुष्य का भी। तो जो स्वरूप की पहचान वाला दूसरा समकित है, जो तीसरा परमार्थ सम्यक्त्व का अंगभूत कारण है, उसका गर्भ में आना प्रथम समकित में होता है। उसको समकित का प्रत्यक्ष कारण सत्रह गाथा में कहा, स्वच्छंद मताग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य, वो आज्ञाकारिता का वर्णन किया, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य। आग्रह क्या होता है? अपनी समझी हुई बात का आग्रह होता है, अपना मत का, अपना अभिप्राय का आग्रह रहता है, और वही स्वच्छंद है। उसको छोड़ करके समकित तेने बाकियों कारण गणे प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन का कारण है। ज्ञानी की नज़र में प्रत्यक्ष रूप से सम्यक दर्शन का कारण यहाँ पर देखा गया है कि हमको तो प्रत्यक्ष दिखने में आता है, इसका सम्यक दर्शन हमको प्रत्यक्ष दिखने में आया। इस गुप्त तत्व का जो आराधन करता है, ये गुप्त तत्व है, वह प्रत्यक्ष अमृत को पाकर अभय हो जाता है। वो फिर आत्मा के आनंद अमृत को पी करके अजर अमर हो जाएगा, फिर उसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा। इति शिवम, ऐसा करके इति मैंने पूरा कर दिया। ये जो कल्याणकारी मांगलिक बात है, इसको यहाँ हमने समाप्त किया है। यहाँ 200 नंबर का पत्र समाप्त होता है, आगे बसो एक से जरा गूढ़ वधारे से 207 नंबर को ले लो। अच्छे तो आक्रम आपने छोड़ी ने, मतलब पुस्तक प्रमाणे ले सो। यद्यपि किसी प्रकार की क्रिया का उत्थापन नहीं किया जाता, तो भी उन्हें जो लगता है उसका कुछ कारण होना चाहिए, जिस कारण को दूर करना कल्याण रूप है। क्या बात चली है? 207 है लल्लू जी के पर लिखा है, तो क्या है कि वो श्वेतांबर स्थानिक वासी के मुनि के वेश में थे, लेकिन वो मुमुक्षु थे, साधु नहीं थे। वो बात खुद को भी मालूम हुई और उन्होंने मुहपति का त्याग कर दिया और एक मुमुक्षु की तरह उपदेश ग्रहण करने के लिए वो श्रीमद् जी के संग में आते रहते थे। फिर भी वेश त्यागी का होने से लोग उनको सुनने को आते थे। उस प्रसंग को लेकर के बात चली है कि यद्यपि किसी प्रकार की क्रिया का उत्थापन नहीं किया जाता, तो भी उन्हें लगता है उसका कुछ कारण होना चाहिए, जिस कारण को दूर करना कल्याण रूप है। क्या बात हुई? कि बाह्य क्रिया का निषेध और सांप्रदायिक क्रिया का निषेध अध्यात्म के प्रकरण में आता है। वो निषेध करना करने में वो क्रिया जो करते हैं उसको कुछ लग जाता है, बुरा लग जाता है, ये बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। तो या तो उत्थापन करते हैं, मैंने उड़ाते हैं क्रिया को, वो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने लिखा कि हम तो क्रिया को नहीं उड़ाते हैं। श्रीमद जी ने सूचना दी होगी कि आपके पास संप्रदाय के लोग आते हैं, वो कुछ भी क्रियाएं करते होंगे, आप उसको उड़ाना मत, क्रिया का निषेध मत करिए। फिर भी कोई शिकायत आई होगी कि भाई उनका उपदेश में बराबर नहीं आती है बात, तो लिखा कि यद्यपि आप उत्थापन नहीं किया जाता है, ठीक है, फिर भी जो उन्हें लगता है तो आपका कोई टोन बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या किया, कहने की पद्धति कि अगले को खड़ा रख करके फिर उनके उसको सुधार करने के बात पुटअप करने की भी एक कला होती है, वो भी एक कला होती है। जो लोग नए नए आते हैं ना, उनके उस उनके विचारों में, उनकी मान्यताओं में फेरफार अवश्य लाना है, लेकिन फेरफार लाते वक्त उनको धक्का लगे, ऐसे हमारी पद्धति नहीं होनी चाहिए। उनको खड़ा रख करके ऐसा करो ने, आप तो स्वभाव तो करते ही हो, जैसे कोई सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रश्न आता है सामने। ऐसा करो, इससे कोई आप जो स्वभाव करते हैं, फिर आगे चलो थोड़ा, हाँ, आपको आगे चलाते हैं, तो वो नहीं करो, ऐसा नहीं, आप आगे चलो। आगे चलने में क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर चढ़ना है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा, तब तो ऊपर की सीढ़ी में जाएंगे ना, हाँ, सीढ़ी એટલે પગથિયું, નીચેનું પગથિયું છોડો ત્યારે ઉપરનું પગથિયું હાથ આવે ને, નીચેનું પગથિયું પકડી રાખો। હવે તમે કહો મેં આગળ તો વધતા નથી, વો સીડી કો પકડ કરકે હમ આગે તો બઢે નહીં, પર હમકો આગે બઢના હૈ, તો આપકો યે પગથ વો સીડી કો છોડ કરકે થોડા આગે બઢના પડેગા। નિમોળી નિમોળી હોતી હૈ ને, નીમ કા ફલ, क्या बोलते हैं, लिंबोड़ी बोलते हैं, वो भरी होती है तो कड़वी होती है, और पकती है पीली होती है तो मीठी होती है, और बच्चे लोग उनको खाते हैं क्योंकि वो मुफ्त में मिलती है, उसका पैसा नहीं लगता है। हम भी खाते थे छोटे छोटे थे, उधर तो क्या है, बारिश कम होती है झालावाड़ में, तो झालावाड़ में मीठी निमोड़ी है, उनको आप बच्चे के हाथ में से लेकर के ले आपको तुमको हम आम देते हैं, कैरी, मीठी कैरी आम, पहले तो ना देगा, नहीं 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 ये बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने आम कभी खाई नहीं हो, लेकिन देने वाला समझता है कि निमोड़ी बंद करके उसको आम देना है, और खाएगा तब तो उसको भी लगेगा कि अच्छा हुआ है, लेकिन पहले अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों को जैसे फुसला करके देते ना,
उसको थपाट मार के देंगे तो वो आम भी नहीं खाएगा। तो नए नए जो आते हैं उनकी जो मान्यताएं हैं, क्रियाएं हैं, उसको धक्का नहीं लगे, उस तरह से उसको ट्रीटमेंट देने की एक कला होती है और वो ज्ञानी जानते हैं। तो आपके बात में कुछ कारण है, उनको लगता है उसका कोई कारण है और वो कारण को दूर करना करुणा रूप है, वो कारण को आपको दूर करना चाहिए। क्यों? कि इसको नुकसान होता है तो क्षति अपनी है उसमें, बोलने वाले की क्षति है उसमें। बहुत ये कला कृपालु देव में अद्भुत थे, बहुत अद्भुत थे और ऐसा होना चाहिए कि अगले को खड़ा रख करके फिर कैसे आगे उठाना, वो बात होनी चाहिए। परिणाम में सत को प्राप्त करने वाली और प्रारंभ में सत की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचि को प्रसन्नता देने वाली वैराग्य कथा का प्रसंगोपात उनसे परिचय करना, तो उनसे समागम से, उनके समागम से भी कल्याण की ही वृद्धि होगी, वह कारण भी दूर होगा। देखो क्या मार्गदर्शन दिया है। परिणाम में मैंने फल स्वरूप, परिणाम मैंने रिजल्ट, फल स्वरूप में सत को प्राप्त करने वाली आखिर में फल स्वरूप सत की प्राप्ति होवे और प्रारंभ में सत की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचि को प्रसन्नता देने वाली वैराग्य कथा का प्रसंगोपात उनसे परिचय करना। अभी वैराग्य की उदासीनता की बातें करो आप, दूसरी बातें मत करो। क्या होता है कि जो लोग सांप्रदायिक क्रिया में पड़े हैं वो क्रिया तो नियमित करते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है और मैकेनिकली लोग क्रिया कर लेते हैं। प्रकृति वैसी की वैसी रहती है, आसक्ति वैसी की वैसी रहती है, खाने में, पीने में और व्यवहार में कोई सुधार नहीं होता, पारमार्थिक सुधार भी नहीं होता, व्यवहारिक सुधार भी नहीं होता। और संतोष पकड़ लेते हैं कि हम कुछ करते हैं, तो उनको सबसे पहले वैराग्य में ले आना, क्योंकि वैराग्य का वहां अभाव होता है। वैराग्य का अभाव दोनों को होता है, क्रियाकांडियों को भी होता है और सूक्ष्म ज्ञानियों को भी होता है। जो सिर्फ तत्व का अभ्यास करते हैं और भावना विहीन होते हैं, आत्मकल्याण की भावना सही अंदर में जगी नहीं हो और तत्वज्ञान के क्षेत्र में आ गया और तत्वज्ञान का अभ्यास करने लगा, उनको वैराग्य नहीं होता है, उदासीनता नहीं होती है। इसलिए परिभ्रमण की चिंतना में आने वाले को सबसे पहले उदासीनता की प्राप्ति होती है, उसके रस फिक्के हो जाते हैं। इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि सब रस उनके फिक्के हो ही जाते हैं। वो यथार्थ उदासीनता का प्रारंभ यहाँ से होता है। और दूसरी जगह जो त्याग होता है वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य किसी को आता है तो या तो दुख गर्भित आता है, या तो मान गर्भित आता है, या तो लोभ गर्भित आता है। लेकिन यथार्थ वैराग्य ज्ञान गर्भित जो आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि सत के हेतुभूत ऐसी उनकी रुचि, क्या सत की प्राप्ति के हेतुभूत ऐसी जो उनकी रुचि, उनकी प्रसन्नता, रुचि को प्रसन्नता मिले, ऐसे वैराग्य कथा का प्रसंगोपात उनसे परिचय करना, जब भी प्रसंग मिले तब। तो उनके समागम से भी कल्याण की वृद्धि होगी, खुद को भी लाभ होगा और अगले को भी लाभ होगा और वह कारण भी दूर होगा और उनको जो लगता है कुछ वो कारण भी दूर हो जाएगा। हाँ, उसमें दुख गर्भित नहीं होगा, मान गर्भित नहीं होगा, लोभ गर्भित नहीं होगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। और ज्ञान में ना यथार्थ समझ, यथार्थ समझ में है कि मुझे सबसे बड़ा मेरी समस्या है वो तो मेरी परिभ्रमण की समस्या है। कहिए, इस जगत में अनंत जन्म मरण का कारण जो है वो समस्या सबसे बड़ी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो इससे बड़ी कौन सी समस्या है वो बताइए। हाँ, है कोई कि नहीं है? तब ये बात साफ होगी कि जो समझ से उदासीनता आती है, आत्मकल्याण के हेतु से, सत की प्राप्ति से जो उदासीनता आती है वही उदासीनता सही है। जिनमें पृथ्वी आदि का विस्तार से विचार किया गया है, ऐसे वचनों की अपेक्षा वैताल्य अध्ययन जैसे वचन वैराग्य की वृद्धि करते हैं और दूसरे मतभेद वाले प्राणियों को भी उनमें अरुचि नहीं होती। तो कोई स्थानकवासी संप्रदाय में अध्ययन होगा, वैताल्य अध्ययन होगा, दस वैकालिक सूत्र है ना, उसमें शायद होगा लगता है, वैराग्य का कोई प्रकरण होगा, ऐसा प्रकरण स्वाध्याय में लेना, मतमतांतर वाला भी नहीं लेना और पृथ्वी आदि का वर्णन जिसमें है वो बात भी नहीं लेना कि जम्बूद्वीप इतना लंबा चौड़ा है, फिर समुद्र इतना है, फिर पर्वत आते हैं वो इतने बड़े होते हैं, फिर उस प्रकार की नदियाँ होती है, वो कोई जरूरी बात नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अप्रयोजनभूत बात तो स्वाध्याय में लेना नहीं है, प्रयोजनभूत बात में भी सबसे पहले वैराग्य की बात लेना है, नए लोगों के लिए वैराग्य की बात लेना, क्योंकि आसक्ति है वही प्रवेश होने में अवरोधक कारण है, इस मार्ग में प्रवेश होने में अवरोधक कारण वही है। अगर इस पर हमारा ध्यान नहीं है तो बात ही बात में ही रह जाएगी, क्रिया क्रिया में रह जाएगी और काम कुछ होने वाला है ही नहीं। जो साधु आपका अनुसरण करते हैं, इनके साथ कुछ दो पांच ऐसे स्थानकवासी के मुनि थे, वो भी संप्रदाय के बाहर निकल गए थे, उसने उन लोगों ने संप्रदाय छोड़ दिया था। तो कहते हैं कि जो आपका अनुसरण करते हैं उन्हें समय समय पर बताते रहना। क्या बताते रहना? कि धर्म उसी को कहा जा सकता है कि जो धर्म होकर परिणमे, ज्ञान उसी को कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर परिणमे। हम ये सब क्रियाएं वांछन इत्यादि करते हैं वे मिथ्या है ऐसा कहने का मेरा हेतु आप न समझे तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा करके पुटअप करें उसको। ऐसे सीधा नहीं कहेंगे ये सब मिथ्या है, आप मिथ्या दृष्टि है, ये सब मिथ्या है, ऐसा मत कहिए, सीधा नहीं मैं बोले। क्या भाई, अपने तो धर्म करने को आए हैं, इस क्षेत्र में क्यों आए? धर्म कर तो फिर धर्म होकर परिणमे, उसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म होकर नहीं परिणे में उसको धर्म क्या कहे? और ज्ञान उसी को कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर परिणमे, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का स्वसंवेदन, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। जानकारी को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान वैराग्य धर्म एक ही पर्याय का नाम है, एक ही पर्याय का नाम है। तो इस तरह से बात करते करते आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा करके इस प्रकार कह करके उन्हें बताना कि यह जो कुछ हम करते हैं उनमें उसमें कोई ऐसी बात रह जाती है कि जिससे धर्म और ज्ञान हम में अपने रूप से परिणमित नहीं होते हैं। देखो हम करते तो हैं लेकिन धर्म नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, कुछ बात रह जाती है, अवश्य कुछ रह जाता है। ख्याल में आता है कि कुछ रह जाता है? अगर नहीं रह जाता तो धर्म और ज्ञान का परिणमन हो जाना चाहिए था, प्राप्ति धर्म और ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम जो कुछ करते हैं इससे प्राप्ति नहीं हुई तो ये बात साफ हो गई कि कुछ बात रह जाती है, कुछ ऐसी चीज रह जाती है जिसे धर्म और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये बात तो सिर्फ लल्लू जी को बोली है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी ये बात का ख्याल रखना है। जो लोग कम समझते हैं वो लोग तो प्रश्न करेंगे हमको, सबको ये प्रसंग आता है। हमारे परिचय वाले लोग होते हैं, सग में, संबंधी में, मित्र में, तो इस लाइन के तो सब अनजाने होते हैं, कुछ न कुछ तो प्रश्न करते ही हैं कि भाई आप लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, क्या चीज़ है, संप्रदाय से अलग हो करके आप कुछ और जगह बैठते हैं। हाँ, तो बात तो कुछ और होगी, अब है क्या बात? तो उस वक्त हमें उत्तर देने में ऐसा कहीं ऐसा उत्तर नहीं देना कि उसको कुछ लग जाए कि आप लोग सब करते हैं, सब मिथ्या है, झूठ है, पाखंड है, वो है वो है, ऐसा नहीं देना। अगर अगले को कोई जिज्ञासा है तो ऐसा बोलना चाहिए का सब मनुष्य कुछ न कुछ तो धर्म के क्षेत्र में कुछ न कुछ तो करता ही है। मनुष्य में सांप्रदायिक धर्म होने से तीन गति में नहीं है, पशु पक्षी में धर्म का संप्रदाय नहीं, देवलोक में धर्म का संप्रदाय नहीं, नारकी में पण धर्म का संप्रदाय नहीं, एक मनुष्य लोक में है। और कुछ न कुछ संप्रदाय में तो जन्म होता ही है मनुष्य का, वो अपना कुल धर्म के अनुसार कुछ न कुछ धर्म के क्षेत्र में करता ही रहता है। अब वो सत है कि असत है वो एक बात दूसरी है, सही है या सही नहीं है वो बात दूसरी है। तो बात सामने आती है तो अगले को लाभ होवे ऐसी बात करना, नुकसान होवे ऐसी एक भी बात नहीं करना, उसकी सावधानी हमें रखनी है। अगर हमें ऐसी बात करने को नहीं आता है तो ठीक, देखो भाई हमारी तो योग्यता आपको समझा सके ऐसी नहीं है, और फिर भी हम समझाने जाएं तो हमको भी नुकसान हुए और आपको भी नुकसान हुए, वो काम हमको नहीं करना है। इसलिए तुम चलो हमारे साथ और जो बात करते हैं आप समझने की कोशिश, इस तरह से उनको ले जाना चाहिए। लेकिन जल्दी से समझाने के लिए गुरुपद में बैठ जाना नहीं, वो गुरुपद हो जाता है, समझाने का पद है वो गुरुपद में आ जाता है, वो कभी नहीं आने का है, वो ख्याल में रखने का है। यहाँ बहुत कठोर वचनों से या कठोर शब्दों से शुरुआत वाले को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो पक्का हो गया उसको कुछ भी कहो, लेकिन कच्चा है वहां तक उसकी उसके साथ कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात क्या कहते हैं, इस प्रकार कहकर उन्हें बताना कि यह कुछ हम जो करते हैं उसमें कोई ऐसी बात रह जाती है कि जिससे धर्म और ज्ञान हम में अपने रूप से परिणमित नहीं होते और कषाय एवं मिथ्यात्व यानी संदेह का मंदत्व भी नहीं होता। विषय कषाय के परिणाम भी ऐसे ही रहे और मिथ्या श्रद्धा के परिणाम भी वैसे के वैसे रह गए। हैं संदेह का मंदत्व नहीं हुआ, शंका वो सच्चा है या मैं करता हूँ ठीक है या ठीक नहीं है कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमें जीव के कल्याण का पुनः पुनः विचार करने योग्य है। बार बार हमको जीव का कल्याण कैसे होवे इसका विचार हमें करना चाहिए और इस विचारधारा में गहराई से इस बात का हमें पता लगाना चाहिए और उसका विचार करने पर हम कुछ न कुछ फल पाए बिना नहीं रहेंगे। अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो अवश्य हमको इसका फल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। हम सब कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं परंतु अपना संदेह कैसे दूर हो, शंका में सब पड़े हैं, निशंक नहीं है। सत्य क्या है इसकी निशंकता आती नहीं, साक्षात्कार के बिना आएगी कहाँ से। तो हम कुछ करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं परंतु अपना संदेह कैसे दूर हो यह जानने का प्रयत्न नहीं करते। यह जब तक नहीं करेंगे तब तक संदेह दूर कैसे कैसे दूर होगा, और जब तक संदेह होगा तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए संदेह को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। शंका बनी रहती है, धर्म के कुछ भी कार्य करते हैं उनको शंका बने रहती है क्योंकि कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, कल्याण करते हैं कि नहीं करते हैं, विश्वास नहीं आता। इतने साल तक इतना सब कुछ किया, हमारा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, शंका में रहते हैं। क्यों? कि इसलिए निशंक होने की कोई ठोस बात होती नहीं है, इसलिए संदेह तो बना ही रहता है, शंका तो पड़ी रहती है। वह संदेह यह है कि वह यह जीव भव्य है या अभव्य। चलो अच्छा प्रश्न उठाया, मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, भव्य होगा तो हो जाएगा, अभव्य होगा तो नहीं होगा। तो जैन दर्शन की बात है इसलिए भव्य अभव्य की बात लिया है, मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। दीक्षा ले लेते हैं लोग, एक दफे क्या प्रसंग बना था सोनगढ़ में, कोई तीन साधु आ गए, कोई 11 बजे के करीब आए होंगे तो कोई थे नहीं वहाँ, गुरुदेव अकेले थे। तो लोग गुरुदेव के पास गए, नहीं बाहर कुछ आवाज आई तो गुरुदेव अपने कमरे में से बाहर आए। तो लोग सब बात करते करते सब देखते थे, पढ़ते थे स्वाध्याय हॉल में। तो गुरुदेव ने बातचीत बाहर आकर के पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, क्या नाम है। तो बोला कि एक का नाम है दर्शन विजय, दूसरा का नाम था ज्ञान विजय और तीसरे का नाम था चारित्र विजय। तीन साधु थे, गुरुदेव बोले कि नाम तो बहुत बढ़िया है, नाम तो बढ़िया है, ज्ञान विजय, दर्शन विजय, चारित्र विजय। तो फिर बोले, गुरुदेव ने थोड़ा टेस्ट किया कि आपको मालूम हो गया क्या कि आप भव्य है या अभव्य है, आपको कुछ मालूम हुआ क्या, क्या लगता है आपको आप भव्य है या अभव्य है? तो वो तो केवली को मालूम पड़ता है, वो हमको मालूम नहीं है। फिर गुरुदेव ने बात छोड़ दिया, फिर गुरुदेव ने आगे चर्चा नहीं की, इस बात को छोड़ दिया। कहने का क्या मतलब है कि दीक्षा लेने के बाद भी मैं भव्य हूं और अभव्य हूं इसकी निशंकता नहीं होती, तो दूसरों को तो कहां से होगी? ये शंका मूल में बनी रहती है, और जब तक शंका है वहां तक ज्ञान की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में भव्यत्व का या मोक्ष का भणकार आना चाहिए, ये मुमुक्षु की भूमिका की बात है। वो 569 पत्र में कहा है, वो बात आती है, बनती है। हम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, हम सुलभ बुद्धि है या दुर्लभ बुद्धि, हम अल्प संसारी है या अधिक संसारी, ये सब हमें ज्ञात ही ज्ञात हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की ज्ञान कथा का उनसे प्रसंग करना योग्य है, इस तरह से उनको जिज्ञासा में ले आना, ऐसा करके बात किया है। फिर आगे की एक दो बातें हैं, तो बहुत अच्छी बातें किया है, इसलिए तो ये पत्र लिया है। तो कल के स्वाध्याय में समय